તારીખ 24/3/1994 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 19 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ફાટે છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે.
નવું તત્વ મેં હોને પર ભી એકત્વ કો નહીં છોડતા એસા સમય સાર મે ગાથા 13 મે કહા હૈ. ઠીક. और वहाँ महात्मा मोक्ष से रहित कहा है और समय सार के 38 गाथा में कहा है. शुद्ध का विवरण करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि नव तत्व से भिन्न है, तो इसमें मोक्ष तत्व से भी भिन्न है ऐसा कहा. जबकि प्रश्नकाल ने ये स्पष्टीकरण नहीं मांगा है कि बात परस्पर विरुद्ध है तो इसके अविरुद्धता कैसे. बात तो दोनों परस्पर विरुद्ध हुई कि एक तो नव तत्व आत्मा है, नव तत्व मोक्ष में भी है, और फिर आज इस व्याख्या में कहा कि मोक्ष में भी है, मोक्ष का भिन्न है, नव दो बात परस्पर विरुद्ध भी आती है. और प्रश्न को कोई दूसरा ही लिखा है पीछे लिख सकते हैं, देता हूं. आत्मा की मोक्ष के लक्ष्य से कैसे होगी, इस प्रश्न के साथ अभी बातों का तो कोई अनुसंधान नहीं बैठता है, इसलिए स्वतंत्र प्रश्न को हम यहाँ चर्चा में लेंगे. ठीक है. कि कोई भी जीव जब अपना आत्मकल्याण के क्षेत्र में आना चाहता है तो क्यों आना चाहता है, ये सवाल है. इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, दुनिया में विविधता का कोई पार नहीं है. इतनी बड़ी दुनिया छोड़ करके धर्म के क्षेत्र में जीव क्यों आता है, जो इस विषय को बिना सोचे इसमें प्रवेश कर लेता है तो ये रूढ़िगत जो भी धार्मिक प्रक्रिया है, क्रियाएं हैं, बाल क्रिया में उलझता रहता है और वैसे ही आयु पूर्ण कर लेता है. उसको पता ही नहीं है कि मैं क्यों इधर आया, या तो ऊपर ऊपर से ऐसा सोच लेता है कि धर्म करेंगे तो सुखी होंगे. क्या कि उतना तो मोटी बुद्धि में भी समझ में आता है, संसार में पाप तो बहुत होता है, इसलिए थोड़ा धर्म भी कर लेना चाहिए. तो उतने विचार मात्र से कोई आता है वो तो वैसे ही अपना आयु को व्यतीत कर लेता है. जबकि ये बात गुरुदेव ने कही, एक गंभीर बात कही है. इतना ही नहीं, अपने अनुभव से बात कही है. जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने ऐसी शुरुआत की है कि मुझे पूर्ण पवित्रता चाहिए, पूर्ण निर्दोषता चाहिए और इसी से पूरा सुख मिल सकता है, इसके सिवा संपूर्ण सुख और सर्वकाल के लिए सुख मिलना संभव नहीं है. तो एक सर्वोत्कृष्ट पद है जो निर्वाण पद है, उसकी वहां प्रारंभ में नियम में उसके लिए निर्धार करता है जीव. तो उसी के अनुपात में उसका जो प्रयास है वो अपना ध्येय को हासिल करने के लिए चालू होता है. इसको विशेष रूप से खोल सकते हैं अपन कि मोक्ष क्या है, नवतत्व क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, विकार क्या है, विकार क्या है, स्वभाव विभाव क्या है, सब जानते हुए मुमुक्षुओं को अपना आत्म कल्याण के लिए जो बल आना चाहिए, जिससे उसको अनुभूति तक पहुंच सके, ऐसा बल आना चाहिए, क्यों नहीं आता है? यही कारण है कि उसने शुरुआत ठीक ढंग से नहीं की है। यही कारण है इसका। बहुत प्रैक्टिकल बात वो है कि जिसको जितना चाहिए उसके अनुपात में ही पुरुषार्थ वो करेगा। संसार में भी जिसको शाम को 50 रुपये का खर्च है वो उतनी मेहनत करता है, और जिसको शाम को 10,000 की जरूरत है वो उतनी मेहनत करेगा, उतना पुरुषार्थ करेगा। तो हम आपको ये पूछ सकते हैं कि आपको पूरा सुख चाहिए या अधूरा चाहिए? आपको हमेशा के लिए सुख चाहिए, हमेशा हमेशा सुखी रहना चाहते हो, या कुछ दिनों तक बिना सोचे आप कहेंगे कि पूरा सुख पूरे पल के लिए ही चाहिए? तो इसके लिए पता चाहिए, पूर्ण शुद्धि चाहिए, और इसी का दूसरा नाम मोक्ष है। पूर्ण शुद्धि और पूर्ण पवित्रता, उसका ही, और पूर्ण सुख, इसका ही दूसरा नाम मोक्ष है। वास्तव में वो चाहिए तो उसी के अनुपात में ही हमारा पुरुषार्थ चालू हो सकता है। अगर उतना व्यवस्थित रूप से हमने प्रवेश नहीं किया इस मार्ग में, इस लाइन में, तो हमारी जो स्थिति है जो वर्तमान में, कि हम सब कुछ जानते हुए भी हमारा पुरुषार्थ चलता नहीं, हमारा पुरुषार्थ उठता नहीं, और जो भी वर्तमान परिणमन है वो साधन है, लेकिन बिना साध्य साधन किसका? अगर आपने साध्य निश्चित नहीं किया तो मोक्ष का निश्चय कराने के लिए तो मैं अधिकार चलाया है कि मोक्ष का निश्चय कैसे करता है, बहुत पहलू लिया है पंडित जी ने, और हर पहलू को बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की है। लेकिन ऐसा निश्चय होता है तो निश्चय के अनुसार ही कार्य का उठाव आता है। दूसरा दृष्टांत लेवे कि हमको शाम तक 20 किलोमीटर चल के पहुंचना है, तो हमको पता है कि अगर शाम के पहले नहीं पहुंचेंगे तो रास्ते में हम खत्म हो जाएंगे, रास्ता अच्छा नहीं है। रात को या तो डूब जाते हैं या तो प्राणी खा जाते हैं जंगल के, तो उतने हमारे जो कदम है उस तेजी से उठाने के लिए हमें विकल्प नहीं करना पड़ता है। क्यों? तो हमें मालूम है कि बहुत लंबा रास्ता हमको शाम तक पूरा करना है। वैसे जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है उसको अपनी वर्तमान स्थिति का भान होता है कि मुझे बहुत लंबा रास्ता काटना है, बहुत बाकी है, मुझे बहुत करना बाकी है, बहुत करना बाकी है, तो उसके परिणाम में जो तेजी आनी चाहिए वो तेजी आ जाती है। तो आत्मा की प्राप्ति में अनुभव प्रश्न वो है कि आत्मा की प्राप्ति मोक्ष के लक्ष्य से कैसे होती है? प्राप्ति में अनुभव, तो मोक्ष तो पूर्ण अनुभूति है। जिसको पूर्ण अनुभूति के लिए उत्साह आया, निर्योल्लास हुआ, उसको क्या आत्म प्राप्ति में शुरुआत की अनुभव अनुभूति नहीं हो सकती क्या? तो आत्म प्राप्ति की भावना इतनी तीव्र जोर से आती है, इतनी तीव्र जोर से आती है कि उसको हर कार्य में मेरा आत्म कल्याण कैसे हो उन्हीं दृष्टिकोण से वो हर कार्य को देखेगा, उसी लक्ष्य से वो देखेगा और वैसे ही अपनी सब व्यवस्था बिठाएगा कि जहां हमारे ध्येय को विरुद्ध हम नहीं चले, ऐसी व्यवस्था सही परिणाम की होगी और ऐसी व्यवस्था अपने उदय के विषय में उसके परिणामों की चलेगी। तो एक दफे तो इस ध्येय को निश्चित कर ले तो ये सब बातें स्वतः समझ में आ जाती है। दूसरा प्रश्न
इंद्र का, अरुण कुमार जी का एक दूसरा प्रश्न है। आज आपने प्रातः के प्रवचन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को साधन कहा और मोक्ष को साध्य कहा था, यह साध्य साधन संबंध किस प्रकार का है?
ठीक है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ये मोक्ष का मार्ग है, ये तो सूत्र जी का पहला सूत्र है। मार्ग को हो, उपाय को हो, इलाज को हो, साधन को हो, क्या अंतर पड़ता है? इसका फल क्या है? तो मोक्ष है। तो मोक्ष साध्य है और उसको उसका साधन मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है, एक मार्ग है, एक मार्ग फल है, एक साधक है, एक साध्य है। उसमें कोई और तर्क हो तो हम समझ सकते हैं अरुण कुमार जी कि जो भी आपका क्या तर्क है, उसमें साधन नहीं होने के बारे में आपको कौन सी शंका है, किस प्रकार की शंका है, तो बहुत से भी सारी बात है।
भाई अरुण कुमार जी से निवेदन है, दोनों प्रश्नों के बारे में यदि हम इसी समय कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, या बाद में कोई प्रश्न चर्चा करें तो बाद में कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है,
अपना प्रश्न का कोई उत्तर में कोई और टेका प्रश्न उठता है तो उठा सकते हैं, उसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्नकार या दूसरा कोई भी उठा सकते हैं, तो इसमें वो बात हमें रह जाती है समझ में, तो उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे।
अगला प्रश्न है, धर्म क्या है, क्या इसकी कोई परिभाषा, व्याख्या या अभिव्यक्ति है? यह प्रश्न अपने श्री जीवन सिंह जी मेहता का है, जो अपने पंडित जी साथी के पुत्र भी हैं, तो एक दूसरे में थोड़ा जो अगर चर्चा करना भी चाहे तो कर सकते हैं।
धर्म का परिभाषा हमारे परमागम में प्रसिद्ध है, मत्थु स्वभावो धर्मो। क्या परिभाषा है? वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है, और जो वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु का जो स्वभाव है वो शक्ति रूप है, सामर्थ्य रूप है स्वभाव। उसी स्वभाव के अभिव्यक्ति अपने शुद्ध परिणमन में होती है, तो इसी को भी धर्म कहने में आता है। जैसे आत्मा को आत्म शांति मिले वही आत्मा का धर्म है, क्योंकि वो भी एक उनका स्वभाव है, प्रॉपर्टी है। ऐसे आत्मा में अनंत ज्ञान भरा हो वो भी उसका स्वभाव है, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो है भी धर्म है। आत्मा में चारित्र शक्ति है, शुद्ध चारित्र प्रकट हो भी धर्म है। तो ऐसे धर्म की तो अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन मूल जो सूत्र है वो अबाध्य है, कोई भी तर्क कुतर्क से उसमें कोई बाधा कर सकते नहीं है, इसलिए मूल सूत्र वो है। फिर इसके जो स्वभाव की अनेक प्रकार की जो दशाएं हैं, किंतु क्योंकि उसमें अनंत गुण है, स्वभाव है वो अनंत गुणात्मक है, पर किसी भी एक गुण की अभिव्यक्ति से धर्म की परिभाषा शास्त्र में आती है। अनेक प्रकार से शास्त्र में तनु की परिभाषा होने पर भी उसका सामान्य रूप वो है कि वो स्वभाव प्रकट हुआ है, फिर किसी गुण के माध्यम से उसको बताया जाता है या बोला जाता है।
अगले प्रश्न है, एक पंक्ति में दो प्रश्न है। पहला है, धर्म की कोई व्याख्या नहीं है, यह एक व्याप्ति है जो हमारे प्रत्येक जीव के रूप में प्राप्त है। धर्म की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, ये तो आत्मदर्शन है जो सिर्फ अंतस की क्रांति है, जो स्वर्ग में थे अभी इसके लिए कोई परिभाषा नहीं है।
आपका कहना यह सही है कि धर्म एक परिणमन रूप है, प्रयोग रूप है, लेकिन सर्वथा परिभाषा से रहित हो तो उसको कोई बता ही नहीं सकते थे, न कोई कह सकते थे, न कोई सुन सकते भी थे। तो जो अधर्मी है उसको धर्म की प्राप्ति तो बताए बिना, कहे बिना, सुने बिना तो आई नहीं, इसलिए सर्वथा यह अवाच्य है ऐसा भी नहीं है। कथनचित वाच्य भी है और कथनचित अवाच्य भी है। ये कह सकते हैं हम कि बहुभाग अवाच्य है, संकेत मात्र वाच्य है, ऐसा कह सकते हैं। क्यों? कि धर्म में अनंत गुण का परिणमन है, जबकि इसकी परिभाषा में कुछ एक गुण का परिणमन की बात आती है। जैसे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि क्या है, कि धर्म है, मोक्ष मार्ग है वो धर्म है, तो उतना तो कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है, चरित्र कल धर्म वो ये भी सूत्र है शंकराचार्य का। तो सर्वथा वचन अगोचर है ऐसा भी नहीं है, और सर्वथा वचन गोचर है ऐसा भी नहीं है। इस तरह से उसको जैसा है वैसा समझना चाहिए।
जी, अगर हम उसको परिभाषा में जानते हैं तो परिधि बनती है, और धर्म की कोई परिधि नहीं हो सकती, क्योंकि परिधि है वो बाह्य वस्तु है और धर्म है वो अंतर्राष्ट्रीय की वस्तु है, इसलिए उसको परिभाषा के संकेत क्षेत्र में कैसे बांध सकते।
तो क्या है, कथनचित कहने से वो परिधि से मुक्त हो जाता है, जबकि ये कथनचित अभिव्यक्त होता है तो उसमें परिधि नहीं रही। ठीक है, आपको शंका का समाधान होता है। कथनचित कहने से हमारी मर्यादा हमने पूरी वहां नहीं की, बहुत बाकी है, ये हम साथ ही कहते हैं तो वो परिधि में नहीं आता है।
दूसरा है, प्रेमी में अभिवृद्धि पूर्वक जबकि परिवर्तन होता है, श्रेणी में अपनी कीमत जबकि परिवर्तन होता है तो क्या वो उपयोग होते हैं? ऐसे
ज्ञान में गेहूं का भेद ज्ञान होना तो विकल्प है, ऐसा शास्त्र वचन भी है। विकल्प शब्द का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न प्रकरण में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। एक तो स्थूल रूप से हम जो विचार करते हैं उसको भी विकल्प कहते हैं, तो उसमें राग और ज्ञान के मिश्र पर्याय है हमारे विचार में, उसको हम विकल्प भी कहते हैं, विकल्प की संज्ञा भी उसको कहते हैं। और गेहूं में अनेक प्रकार के ज्ञान में गेहूं का अनेक प्रकार का जो भेद होता है उसको भी विकल्प कहने में आता है। कह सकते हैं, कहने में आपत्ति नहीं है, फिर भी हमारा जो कोई विकल्प विचार भी विकल्प और ये विकल्प एक नहीं है, दो अलग अलग बात है। इतनी सी बात है।
जो दूसरा विकल्प आपने फरमाया तो वो क्या केवल ज्ञान में भी होता है?
उस ज्ञान को विकल्पात्मक ही कहने में आता है, जो मेय परक ज्ञान है उसको विकल्पात्मक ज्ञान कहा है, ऐसा कहने का एक पद्धति है कि मेय परक जितना ज्ञान है उसको विकल्पात्मक ज्ञान कहने में आता है, उसको साकार ज्ञान भी कहने में आता है, ऐसे कहने की पद्धति है शास्त्र में। लेकिन जो है सो वस्तु का स्वरूप तो जो है सो समझना है, क्योंकि विकल्प के अर्थ घटन अलग अलग भी है।
इस
पंचाध्याय में कहा पंचाध्याय में ऐसे ज्ञान को स्वविकल्प कहा है, इसलिए वो शास्त्र वचन है। तो उसका अर्थ में वो विकल्प नहीं लेना है, विकल्प के बहुत अर्थ किए हैं। दूसरा प्रश्न है, श्रेणी में अबुद्धि पूर्वक व्यक्ति परिवर्तन होता है तो व्यक्ति परिवर्तन का वहां अर्थ वो है कि एक गेय से दूसरे गेय में ज्ञान का परिवर्तन होना, जबकि विषय अबुद्धि पूर्वक का है तो हम उसको बुद्धिपूर्वक कैसे ज्ञान में लेंगे ये बताइए आप, जबकि वो केवल ज्ञान का विषय है तो उसकी कल्पना हमें कोई करनी है क्या?
सिद्धांत पूछना चाहते हैं ना, सिद्धांत में जीव दो प्रकार का हो गया था, उस समय एक घर को जान रहा है और एक ऐसा जो पढ़ने भी जानने में लग रहा है, एक साथ जो काम प्रेम की अवस्था में संभव है क्या? ये एक प्रकार का प्रश्न करता
है। ऐसा है कि ज्ञान में स्वतः प्रकाशक पना होता है तो वो उपयोग हो जाता है क्या? मेरा प्रश्न है, जब आप इसी तरह सोचते हो तो स्वतः प्रकाशक बना में क्या दो उपयोग हो जाता है क्या? तो समस्त का उपयोग स्वतः प्रकाशक नहीं है क्या? मित्रों से जानता है क्या, एक साथ जानता है,
दोनों आपको
तो ऐसे स्थूल रूप से ज्ञान को नहीं समझना चाहिए। ज्ञान एक ऐसा पर्याय है जिसमें बहुत सूक्ष्मताएं भरी हैं, इतनी सूक्ष्मताएं भरी हैं कि इसकी चरम सीमा की परिभाषा आई कि श्रेणी में व्यक्ति परिवर्तन भी होता है जबकि श्रेणी में शुद्ध उपयोग भी होता है ना, फिर भी व्यक्ति परिवर्तन है मानना तो पड़ेगा, प्रथम वितर्क विचार सब सब आता है, तो ये बहुत सूक्ष्म परिणमन है। तो शास्त्र कथन में कहीं स्थूल कथन से विवक्षा होती है, कभी सूक्ष्म कथन से विवक्षा भी होती है। जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे जीव में सभी प्रकार के पांच परावर्तन में सभी भव कर लिए हैं, कोई भव हमने नहीं छोड़ा है, अतः लेकिन ये स्थूल कथन है। सम्यक दृष्टि को जो जो वह मिलता है वो उन्होंने मिला है किसी को, सूक्ष्म कथन वो है इसका। कभी वो सौधर्म इंद्र नहीं हुआ है, कभी वो लोकांतिक देव नहीं हुआ है, कभी सर्वार सिद्धि में देव नहीं हुआ है, इन सूक्ष्म कथन है। हम पकड़ करके बैठ जाए कि पंच परावर्तन में पूरे पूरे जितने भी गौरव मिल गए हैं, कोई बातें अनंत बार मिल गया, अरे दूसरा वो होता ही नहीं, उसको अनंत बार कहां से मिलेगा। तो कोई कथन तो स्थूल रूप से होता है, कोई कथन सूक्ष्म रूप से होता है। अब सूक्ष्म कथन जब आता है तब हम आता है राज्य हमारे स्थूल कथन के, और रवि जो परस्पर विरोधी बात है वो ऐसी बात नहीं है। जो केवली गम्य बात है वो सही है, उसमें उपयोग एक काल में एक ही गेय को जानता है, ये स्थूल कथन को वहां नहीं लेना चाहिए, तभी समाधान होगा। ये बात प्रयोजन है, विश्व जी का प्रयोजन है, प्रयोजन है, क्योंकि उसका पूरा समाधान तो केवल ही दे सकता है, कोई सदमत नहीं दे पाएगा। ये तो मोटी मोटी बात है कि स्थूल कथन में सूक्ष्म कथन।
अगला प्रश्न है, पाप को बुरा है, पुण्य भी संसार है, बंधन है, जाता नहीं, फिर क्या करना। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, दृष्टांत पूर्वक समझाएं।
तो मूल की बात तो वो है कि करना, कर्तृत्व रूप से करना तो एक भी पर्याय का नहीं है। पुण्य पाप की तो बात छोड़ो, समय दर्शन के भी आप भी उसमें नहीं है, शुद्ध पर्याय शुद्ध उपयोग की बात भी उसमें नहीं आती। इसलिए कर्तृत्व भाव से करने का तो मूल में से हमारा अभिप्राय छूट जाना चाहिए। अब बात यह संस्था की, जब हमें कर्तृत्व से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारी समझ सही समझ है, तो फिर सहज कैसे होता है वो हमें समझना है। तो सहज जो अवस्था होती है उस सहजता का ज्ञान कब आता है, कि सहज स्वभाव के अवलंबन में आएंगे तब सभी पर्याय की सहजता का ज्ञान आता है, और उसमें कोई पर्याय का कर्तृत्व नहीं रहता है। फिर भी जो कर्तव्य होकर आ जाता है, इस वक्त सहज स्वभाव का अवलंबन है, वही कर्तव्य होगा, वही तो किया गया, अब क्या करना बाकी रहा है, बात तो खत्म हो जाती है। इसलिए हमारी जो विचारधारा है उसमें ये करना वो करना करो वाला जो प्रकार है वो प्रकार सही नहीं है। हमें इस प्रकार को छोड़ करके जिस ढंग से जिस कार्य पद्धति से काम होता है उस कार्य पद्धति में प्रवेश करना चाहिए। छूट सकती है, नहीं छूटती वो अलग बात है, किंतु छूट सकती है, छोड़ सकते हैं।
कृपया मोक्ष का भावार्थ और खुलासा करें, द्रव्य स्वभाव तथा पर्याय का अर्थ में किस प्रकार समझे।
मोक्ष का भावार्थ वो है कि मुक्त भाव में परिणमन होना। मुक्त भाव में मैंने कहीं भी हमारे परिणाम आत्मा को छोड़कर प्रतिबंधक होता है, प्रतिबंध युक्त होता है, इससे विरुद्ध कहीं भी हमारे परिणाम अप्रतिबद्ध रूप से हमारे आत्मा में ही रहा करे, उसी का उसको कहते हैं मोक्ष का भावार्थ। फिर ये परिपूर्ण होता है तो उसको मोक्ष कहते हैं, ये अपूर्ण होता है तो उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन आंशिक मोक्ष है वो मोक्ष मार्ग है और परिपूर्ण मुक्त भाव है वो मोक्ष है। उसमें आत्मा के सभी गुण परिपूर्ण शुद्ध रूप से परिणमन करते हैं, एक भी गुण उसमें अशुद्ध नहीं रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं। और भी इसमें कोई प्रश्न का विशेष रूप से चाहिए उत्तर तो पूछ सकते हैं। द्रव्य स्वभाव तथा पर्याय के अर्थ में किस प्रकार समझे? द्रव्य स्वभाव में तो बद्ध मोक्ष का सवाल पैदा ही नहीं होता है। द्रव्य स्वभाव तो जैसा है वैसा है, न उसको द्रव्य के साथ से कुछ लेना बंध के साथ लेना देना है, न मोक्ष के साथ भी लेना देना है। ये जो पर्याय है उसकी तो चर्चा चली कि जो अप्रतिबंध
पर्याय सभी तो द्रव्य है या पर्याय वही तो द्रव्य है, स्पष्ट करें इसके लिए जल को विकल्प में द्रव्य गुण पर्याय से रहित है, जल को विकल्प द्रव्य गुण पर्याय से रहित है ऐसा किसी विद्वानी ने कहा चर्चा में आया था, वह क्या और कैसा है जल गुरु के गुरु?
दृष्टि का विषय पर्याय विहित द्रव्य है, पर्याय सहित द्रव्य नहीं है। क्यों? यहां दृष्टि माने श्रद्धा, तो श्रद्धा है वो क्या कार्य करती है? अस्तित्व ग्रहण करती है। तो सिर्फ मूल स्वरूप है, हमारा जो मूल स्वरूप है उसका हमारे संतरा के साथ संबंध रहता है। पर्याय में वो हमारा मूल स्वरूप नहीं है, क्योंकि इसमें अनादेशित संसार है, विकार है, ये हमारा मूल स्वरूप है ही। तो हमारा श्रद्धा का विषय तो हमारा मूल स्वरूप है, इसलिए इस हेतु से श्रद्धा का विषय पर्याय रहित द्रव्य ही हो सकता है। पर्याय सहित द्रव्य श्रद्धा का विशेष हो जाए तो संसार की भी श्रद्धा हो जाएगी जो कर्तव्य नहीं है, विकार की भी श्रद्धा हो जाएगी जो कर्तव्य नहीं है।
इसमें एक प्रश्न है
थोड़ा सा,
जो पर्याय रहित दृष्टि का विषय कहा है तो कार्तिकेय अनुपेक्षा में चंद्राचार्य की टीका में भी ऐसा आया है कि विशेष जो है वो सामान्य की प्रथा है या कभी के गुरु की प्रथा के समान है, तो इसका इसके साथ किस तरह से संबंध
है? वो ज्ञान प्रधान श्रद्धान की बात कर रहे हैं, हमने जो बात करी वो श्रद्धा प्रधान श्रद्धान की बात थी। जैसे सुबह स्वाध्याय में और भी शायद आया पूर्णमुनि के शब्द में कि उपादेयता होना, मोक्ष की उपादेयता होना है, तो चारित्र प्रधान श्रद्धा की बात होना, उपादेयता मानना, उपादेयता मानना ऐसा आया, ये चारित्र प्रधान श्रद्धा की बात है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बहुत उठते हैं उसका एक ही कारण है और इसका जो समाधान हो गया तो फिर इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठेंगे। हमने तत्वानिशय में जो लिखा है उसमें एक प्रकरण लिखा है विवेक्षा 36 विवेक्षा के भेद लिए हैं, तो इसमें 5 तो वो लिए हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 भेद तो वो है श्रद्धा ज्ञान चारित्र पुरुषार्थ और सुख। आत्मा के जो 5 प्रधान गुण हैं उसकी परिभाषा पांचों में अरस्परस होती है, श्रद्धा के श्रद्धा प्रधान भी विवेक्षा होती है, ज्ञान प्रधान भी होती है, चारित्र प्रधान भी होती है, पुरुषार्थ प्रधान भी होती है और सुख प्रधान भी होती है। ऐसे ज्ञान के, ऐसे चारित्र के, ऐसे सुख के, ऐसे पुरुषार्थ 25 प्रयोग हो गया। तो यहां प्रथम के विवेक्षा से समझे तो विवेक नहीं होगा, ज्ञान का विषय तो द्रव्य परिणाय दोनों है, उसमें ज्ञान वो भी जानता है कि श्रद्धा करने योग्य विषय की तरह है, वो ज्ञान जानता है। ज्ञान समझता है कि श्रद्धेय विषय कितना है, वो ज्ञान समझता है अच्छी तरह, इसलिए चिंतन में वो बात समझ में आ सकती है। तो इसका मतलब यह है कि कथन करने से वो कुछ परिधि में आ जाता है, कि मेरी आपत्ति होने से ऐसा कहना पड़ता है कि जो है सो है, लेकिन है तो है इसमें सब समझते हैं, ऐसे है मतलब क्या समझ में नहीं आता है, तो फिर समझाने के लिए कुछ परिधि में उसको लेना पड़ता है, लेकिन कथन से लगा करके ऐसी बात है। तो ये भी बात है कि जो कार्तिक अनुप्रेक्षा में ऐसी बात आती है, कहीं भी आती है, द्रव्य प्रणाम में भी ऐसा है, द्रव्य का द्रव्य प्रधान, गुण प्रधान और पर्याय प्रधान कथन होता है, ऐसा गुण का तीन होता है, ऐसा पर्याय का भी तीन होता है। 34 तो वो हो गया, 25 में 34। अब बात रही भेद अभेद की, भेद का विषय भेद प्रधान भी कह सकते हैं, अभेद प्रधान भी कह सकते हैं, अभेद का विषय अभेद प्रधान भी कह सकते हैं और भेद प्रधान भी कह सकते हैं। 36 विदिशा अगर आप समझ लो तो फिर कोई भी शास्त्र कथन में आपको विरोधाभास मालूम नहीं पड़ेगा। शास्त्र कथन समझने के एक चाबी है, तो विदिशा कहां कैसी चली है आप समझ लो तो बात खत्म हो जाएगी। तो विचार हमें ऐसे आया था क्योंकि कवियों में जो साधन का कथन अधिकतर ज्ञान प्रदान करते हैं, तो कुछ दोनों विद्वानों में चर्चा चल गई थी कि भाई आप कहते हैं कि श्रद्धा का विषय उतना ही है, लेकिन या तो पूर्व मुझे ऐसा कहते हैं कि मानना ऐसे मानना ऐसे मानना, ये तो सब ज्ञान की बात आती है। तो जो उत्तर देने वाले विद्वान थे थोड़ा उलझन में आ गए कि बात तो पूर्व मुझे कहते हो तो फिर हम तो कुछ इसके आगे तो नहीं कह सकते हैं, जी के पास तो सबको खड़ा रहना पड़ता है हमारे विद्वान को। तो फिर कभी हमारा मूल मिलना हो गया कि भाई ये बात कैसी है, हम तो इसका कोई जवाब नहीं दे सके, तो बात का कथन तो बात है, समझ में तो हमको कोई अड़चन नहीं आती है, लेकिन ये बात संतान के ज्ञान की कैसे घोटाला होता है वापस में कैसे समझ में नहीं आता। तो उस पर से हमको विचार आया कि देखिए ये ज्ञान प्रधान श्रद्धा प्रधान चारित्र प्रधान प्रधान पुरुषा प्रधान कुछ भी कथन आ सकता है, अब उसकी विवेक्षा समझ लीजिए। इस पर से वो पूरा चैप्टर लिखा गया है। विकल्प में द्रव्य परिवार से अभिनय करे ऐसा किसी विद्वान के साथ चर्चा में आया था, वो क्यों और कैसा है? विकल्प में माने उसके विकल्प के परिधि में हमें नहीं लेना चाहिए। भाई साहब को एक प्रश्न में एक सुंदरता है, वो ये है कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारा स्वरूप जो है वो अतिद्र ज्ञान गोचर है, इंद्र ज्ञान गोचर नहीं है, तो फिर हम परिभाषा करके विकल्प उठा करके संकल्प करके जो भी हम समझते हैं उसमें एक डेंजर पॉइंट है जहां हम रेड लाइट छोड़ रखेंगे। प्रश्न वो बात बहुत सुंदर है कि कहीं भी हमें अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय को इंद्रिय ज्ञान में समावेश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये मेंटल परीक्षण हो जाएगा। एक यानी हमें एक सीमा में असीम चीज को एक सीमा में बांध लेंगे तो एक नई आपत्ति खड़ी हो जाएगी। एक गणित विख्यात का प्रश्न आ सकता है, मान गणित विख्यात होता है इसलिए इस तरह से कभी भी शास्त्र पढ़ करके आत्मा को मन के संकल्प विकल्प में या किसी परिभाषा में फील कर देना ये बहुत विख्यात है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए वो सवाल पैदा हो सकता है आपका, ठीक। तो फिर वो करना चाहिए कि कुछ अपेक्षा से ऐसा बताया जाता है लेकिन जो ये अनुभव का विषय है वो अनुभव से हम समझे, अनुभव का विषय बिना अनुभव समझने का हमारा आग्रह है ये विरोधी अनुभव है, इसे हमें छोड़ देना चाहिए या बिना कर देना चाहिए। इसलिए जैसे खाने की चीज मुंह में रख करके ही निश्चित की जाती है, कलर से नहीं, जामुन काला भी होता है और पीला भी होता है, आता है ना काला जामुन मिठाई में आता है, तो काला है इसलिए कड़वा है ऐसा तो नहीं कह सकते, ये खाने की चीज है। ऐसे आत्मा है, धर्म है, वो अनुभव की चीज है, सुख है वो अनुभव की चीज है, दुख है वो अनुभव की चीज है, पर हम उसको परिभाषा से समझना चाहते हैं, विकल्प से बिना अनुभव विकल्प से समझना चाहते हैं, ये हमारी समझने की पद्धति गलत है, ये सही पद्धति नहीं है। जैसे कि दुख को भी समझना है तो हम परिभाषा बोल देंगे, आकुलता दुख का स्वरूप है, परिभाषा तो सही है लेकिन दुख अनुभव का विषय है, परिभाषा का विषय नहीं है। तो उसको परिभाषा से नहीं समझना चाहिए, उसको हम अनुभव से समझना चाहिए, इसका सही ज्ञान होगा। जो अनुभव का विषय अनुभव से नहीं समझते हैं वही तकलीफ होती है और ज्यादा तकलीफ ये विद्वान होती है, क्योंकि विद्वानों में ये पद्धति जब नहीं आती है, अनुभव की चीज अनुभव से समझने की पद्धति नहीं आती है तो कई प्रकार के विकल्प वृद्धि हो जाती है। इसलिए विकल्प वृद्धि हो जाती है कि बात तो सही समझ में जो आनी चाहिए उस ढंग से तो आई नहीं, और कहीं भी आप दूसरे दूसरे दिशा में आएगी तो उसका जो अनुरोध करना है वो उसको मिटेगा नहीं। इसलिए जो कार्य जो समझने की पद्धति है हमारा तो इस विषय में यह अभिप्राय है कि ये मार्ग ही अनुभव प्रधान है। क्या 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 कहते हैं जरा कम ये करिए,
वो इंद्रिय ज्ञान से भी है, ये कह रहे हैं
वो बात तो इंद्रिय ज्ञान से समझी जाएगी।
ऐसा पूर्वग्रह आप क्यों रखते हो मेरा सवाल है, इस पूर्वदर्शन क्यों खड़ेगा, क्या आप अनुभव ज्ञान से कहीं संसार के विषय को नहीं समझते हैं? आप साइकिल जानते हो क्या, साइकिल चलाना जानते हो, जानते हो नहीं जानते, जानते हो अब बैलेंस कैसे रखना, आप परिभाषा से समझाइए हमें, आपको भी इधर झुकना है ना इधर झुकना है, और टू व्हीलर है ऐसे तो रहेगा नहीं खड़ा, और गतिमान होकर के खड़ा रहता है तो देखने में आता है घंटों तक वो ऐसा रहता है पड़ता नहीं है, लेकिन तो एक सेकंड में उधर पड़ जाएगा साइकिल को, और बैलेंस कैसे रखना इसकी बड़ी भाषा क्या है, ये बहने रोटी बनाती है उसमें बैलेंस रखती है तो कहीं मोटी छोटी पतली नहीं होती है, तो कैसे कैसे उसको बैलेंस रखना समझाइए, कोई बहन जी जानती हो तो बहन बता दे, भाई जानते हो तो भाई बता दे। कई बात ऐसी है जो ऐसे समझ में नहीं आती, प्रैक्टिस से समझ में आती है, प्रैक्टिस का दूसरा नाम अनुभव है, इसे प्रैक्टिकल नॉलेज को या अनुभव ज्ञान को एक ही बात है। ज्ञान करने के दो तरीके हैं, एक समझने का एक अनुभव करने का। नौकरी करने वाले को क्या पूछा जाता है, अब पढ़े तो ठीक है आपको देख लिया लेकिन अनुभव क्या है, तो
करते कुछ भी कराए करते। तो इसका मतलब ये है उनके लिए जो बात हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम साथ मिलने के लिए तो हमारी स्मृति दो तरह की होती है। एक समझ के जो दो महीने एक अनुभव के लिए नहीं होती है। समझ की दिन सही सांस से निकालो अनुभव के देवते सही अनुभव से निकालो। अनुभव की दिन समझ से नहीं निकलेगी समझ के दिन में समझ से निकलेगी तो उसके घर निकालने के लिए मर्यादा है अनुभव प्रधान है। इसलिए हमें हमारे अनुभव को ठीक करना पड़ेगा। अकेले समझ से पढ़ने से सुनने से यह काम होने वाला
Thank you.